ओम शांति। जी तुम्हें ठीक गाया, ठीक गाया क्या है भाई? लोगों को लगता है बाबा का प्यार इतना है सच? कल लगा आते ही क्या किया बाबा ने? ओम शांति की। अव्यक्त में शायद पहली बार, साकार में तो ओम शांति से ही शुरू होती थी मुरली, पर अव्यक्त में तो दूसरी लहर थी। लेकिन बाबा कल तो प्यार में बहुत ही था और बार बार कहा बाप के इस प्यार से और परिवार के प्यार से सब चल रहे हैं अच्छे। तो बाबा की कुछ पॉइंट्स थोड़ी सी थी, जरा उन्हें याद कर लें पहले, फिर चर्चा करेंगे।
बोलो।
खुश होते हैं बहुत जब देखते हैं बच्चों ने महान लक्ष्य रखा है और तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और करा रहे हैं। कोई भी बाप माँ लौकिक में भी बच्चों से कब खुश होते हैं बताओ माताएं? बच्चा आगे बढ़े, पढ़ाई में बहुत होशियार हो, तभी खुश होते हैं ना। और ढीला ढाला हो तो तंग होते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों से बड़े तंग हो रहे हैं। कुछ अच्छे बच्चे बहुत हैं लेकिन बिगड़ भी बहुत रहे हैं। और क्या कहा? सदा रहे। और बोलो, छोटी बातें थी एक एक लाइन की। मदद, ये बात बहुत ही अंडरलाइन करने की है जीवन में कि बाबा बहुत मदद दे रहा है, परंतु किन्हें? जो हिम्मत रखते हैं, पुरुषार्थ की हिम्मत, माया को जीतने की हिम्मत, लौकिक में बाधाओं को पार करने की हिम्मत। हर जगह हिम्मत बहुत चाहिए ना, थका देती हैं सब चीजें मनुष्य को। बहुत बाबा के बच्चे 20-20 साल ज्ञान में चल के छोड़ रहे हैं, 10 साल चलने वाले बहुत ढीले हो रहे हैं क्योंकि थक गए। किसी को माया ने थकाया, किसी को परिस्थितियों ने थकाया और किसी को किसी को जिम्मेदारियों ने भी थकाया और किसी को बीमारियों ने बहुत थकाया। एक का फोन था, मेरा पति 5 साल से ज्ञान में चला, अब थोड़ी सी परिस्थिति आई तो छोड़ दिया। क्यों? बाबा मदद नहीं करता। भगवान से भी नाराज बहुत होते हैं लोग, उसके बच्चे, लेकिन बाबा ने कह दिया बाबा तो मदद करता ही है, हमें उसको महसूस करना चाहिए और लेने का तरीका भी आना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई माता पिता अपने बच्चों को मदद न करे। बोलो, माताओं का अनुभव है ना ये? हो सकता है बच्चा बीमार हो और आप खा पी के सो जाओ, होगा? हो ही नहीं सकता, नेचर ही नहीं होती माता पिता की। वो तो सांसारिक सभी माता पिताओं से बहुत अलग, जो प्यार में, बहुत प्यार में सबको पालना देता है, जो सबकी सुनता है, पर उसकी कम सुनते हैं ना लोग। तो थकाना स्वयं को नहीं है, जो न थके वो आगे बढ़ेंगे। किसी को एक चीज और थका रही है आजकल, ज्यादा सोचने की आदत, व्यर्थ संकल्प, ये बातों को थका रहे हैं और ये स्पीड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही होगी? उस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे, पर जानकारी सबको होनी चाहिए। व्यर्थ की स्पीड बहुतों के पास बढ़ रही है, बड़ों के पास भी, बूढ़ों के पास भी। क्यों? जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है समाप्ति की ओर, माया के पांचों विकार और जन्म जन्म के कर्मों के हिसाब किताब आ रहे हैं सामने। बाबा ने बहुत पहले सावधान किया हुआ है, जिसमें जिस विकार का अंश रह जाएगा, हवा उसको प्रज्वलित कर देगी। हवा कौन से? माया की, विकारों की, काम की। आजकल संसार में काम की आंधी चल रही है, हमें पता चलता है, क्योंकि मेरे पास लोग बहुत मिलने आते हैं, बहुतों के पास ये समस्या बढ़ती जा रही है। क्या करना है पवित्र आत्माओं को? बोलो। सकास देनी है, प्योर वाइब्रेशंस देनी है, बाहर के लोगों को नहीं, किसे? ब्राह्मणों को, जो माया से युद्ध कर रहे हैं, जिनके लिए बाबा ने कल कहा बहादुर बनो, याद है? महावीर, घबराओ नहीं, बहुत बनो भी और बनाओ भी, क्योंकि माया का फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसलिए जिसमें जो संस्कार हैं, वो तेज रूप दिखाएंगे अब, किसी को स्वप्नों के रूप में, किसी को संकल्पों के रूप में, किसी को देह के आकर्षण के रूप में, किसी को इच्छाओं के रूप में। स्वयं को इनसे बचाना है। बचा कौन सकेंगे? इसका भी उत्तर आपके पास है, हैं? बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा स्वमान, बहुत अच्छा स्वमान। एक चीज के लिए और मैं सबको सावधान करता रहता हूँ, और वो चीज बढ़ती जा रही है संसार में। अखबार में आया, संसार में रोज 3000 लोग सुसाइड करते हैं, रोज 3000, बहुत बड़ी संख्या है ना। तो ये आत्माएं भटकती रहती हैं, इसलिए तेजी से इन भटकती आत्माओं का प्रकोप भी इस संसार में बढ़ता जा रहा है, और बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तंत्र मंत्र का प्रयोग बढ़ रहा है, माताओं ने बहुतों ने सीख लिया है, कहाँ से सीखा मुझे पता नहीं, कौन ट्रेनिंग देता है, मैं सुना टीवी पर आता है, और माताएं दूसरों को कराती रहती हैं। पाप है या पुण्य? महापाप, भगवान ने कह दिया है महापाप। और जब उनको भुगतना पड़ता है तब परेशान होती है, क्योंकि जो दूसरों पे तंत्र मंत्र का प्रयोग कराता है, वो प्रयोग कुछ ही समय के बाद उल्ट रिवर्स होकर उनको ही आ जाता है। ये इसका सिद्धांत भी है। इसलिए अपने ज्ञान योग के मार्ग को छोड़कर इस कार्य में नहीं लगना चाहिए। मैं माताओं को सावधान करता हूँ, बुरा न लगे आपको, जरूरी नहीं आप करते हो, पर कई करते हैं, मुझे पता है। मेरे पास टीचर बहनें भी बहुत आती हैं कि माताओं ने गड़बड़ कर दी भोग में, तो सोचो उनकी दुर्गति कितनी होगी, जो भोग में गड़बड़ कर रहे हैं, जो भगवान को लगने जा रहा है, जिसको पवित्र आत्माएं खाएंगी, उनकी सदगति होगी? बहुत भुगतेंगे, भुगतते हैं, मैं तो देखता हूँ ऐसे लोगों को। तो सभी इस प्रभाव से बचने के लिए दो प्रैक्टिस रखेंगे, इनका डर नहीं, पक्का कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भूत प्रेत तंत्र मंत्र मुझ पर असर नहीं डाल सकता, विल पावर को बढ़ा दो अपनी, तो उसमें कुछ नहीं है, जीरो। और अगर आप डरेंगे तो वो शेर है। इस बात को सभी को अच्छी तरह समझ लेना है, कराना नहीं, इन धंधों में जाना नहीं है, अपने स्वार्थवश जो करेंगे उन्हें बहुत भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में, भविष्य में नहीं, मेरे पास तो 10 केस ऐसे हैं जिनमें माताओं की दुर्गति हुई, जिन्होंने धंधे किए, बहुत बुरा हाल हुआ, फिर इधर उधर भटकते हैं, क्या करें हम बाबा, योग नहीं लगता, हमारा मन बहुत भटकता है, हम बहुत परेशान रहते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं आजकल हम बहुत परेशान रहते हैं। कौन रहते हैं बहुत परेशान? जिन्होंने दूसरों को बहुत परेशान किया है। तो वो अपनी शान में रह नहीं सकते, तो परेशानी कई गुना होकर उनके पास आ गई है। तो बाबा हम सभी को बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं, हम बहुत अच्छे अभ्यास करें, बहादुर बने, थके नहीं, महावीर बने, अपने वातावरण से दूसरे वातावरण को ठीक करें। सुनी कल ये लाइन, जो बहुतों की शिकायत आती है कि बाहर के गंदे वातावरण में हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, कॉमन एक कंप्लेंट है। ऑफिसों में काम करने वालों की बहुत है, वहाँ के वातावरण में हम अच्छी स्थिति नहीं बना पाते। उन सब को बाबा उत्तर देता है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उस वातावरण को बदलो। एक बहुत अच्छा स्वमान ले लें सभी, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मास्टर रचयिता। पहले से ही इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत चली आती है, ए योगी कैन चार्ज द एटमॉस्फेयर। एक योगी एटमॉस्फेयर को चार्ज कर सकता है, वातावरण को बना सकता है जैसा चाहिए, क्रिएट कर सकता है। तो हम ये न सोचें वातावरण का हम पर असर आ रहा है, हम ये सोचें हम हैं मास्टर क्रिएटर, हर तरह के वातावरण को बदलने वाले। और आप में से कहीं ना कहीं सबको ये अनुभव होगा कि वातावरण को बदला जा सकता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, देखिए इस वातावरण को बदलने के लिए ये बहुत सुंदर महावाक्य है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी शक्तियों की किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो वातावरण दूषित तो इन्हीं से है ना, इसलिए बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारा मुख्य काम है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना। नोट कर लो जो अच्छे पुरुषार्थी, नोट कर ले माताएं, संभाल लें, डायरी पेन तो नहीं है माताओं के पास, इधर नोट कर लें, रिपीट करेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा मुख्य कार्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, बाकी सभी काम तो निमित्त मात्र हैं। ये बहुत बड़ी स्थिति है वातावरण को बनाने वाली, और अगर हम ऐसा अभ्यास करते रहें तो वातावरण हम पे प्रभाव नहीं डालेगा। देखो एक डॉक्टर भी होता है, बीमारों के बीच जाता है, उसको थोड़ा ही बीमारी लगेगी, वो अपने को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना जानता है। हम भी, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, तुमने अवतार लिया है इस संसार को बदलने के लिए। याद करो 18 जनवरी की मुरली, एक अवतार अगर क्रांति ला सकता है तो इतने सारे अवतार क्या करेंगे, कहा था ना बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में। तो हमने अवतार लिया है संसार में सुख शांति स्थापित करने के लिए, संसार की अशांति हम पर इफेक्ट नहीं कर सकती। ये नशा अगर हो जाए तो बाहर का वातावरण चाहे कितना भी गंदा होगा, हमको कोई असर नहीं होगा, बल्कि हमारे जाते ही वहाँ सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना, बाबा प्यार करता है बहुत, बाबा के पास लिस्ट है, नाम है माताओं का लिस्ट में जिनको भगवान प्यार करे। कहानी सुनाया करते हैं ना अबू बिन आदम की, कि उसके सपने में फरिश्ता आया, फरिश्ते के हाथ में इतना बड़ा कागज था, उस पे नाम लिखे हुए थे। अबू ने पूछा क्या लिखा हुआ है इस कागज पर, कहा उनके नाम लिखे हैं जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। तो कहा मेरा भी नाम है क्या, देखा है तो सही पर सबसे नीचे है। अब सोचने लगा सबसे नीचे, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ भगवान को, नाम सबसे नीचे, शायद कुछ गड़बड़ होगी। दूसरी रात को फरिश्ता फिर आया, लिस्ट हाथ में थी, कहा आज कौन सी लिस्ट लाए हो, उनका नाम है जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है। कहा मेरा भी है क्या, कि हाँ सबसे ऊपर। सोच लो भगवान को प्यार करने वाले तो बहुत सभी ब्राह्मण हैं, करते हैं तभी तो बाबा के बने, लेकिन भगवान किसे प्यार करता है, कौन उसकी नजरों में रहते होंगे, किन पर उसकी दृष्टि आती होगी रोज, किनको वो सर्च लाइट देते होंगे रोज, किनको वो समस्याओं से और माया से मुक्त रखने में अपनी छत्र छाया लगा देते होंगे ऊपर रोज, सोचने की बात है। ये उनका परम कर्तव्य है, वो बाप है हमारा, लेकिन ये काम ऑटोमेटिक उनसे होता है। बाबा की मुरलियों का सार देखें, जो सच्चे हैं, जो सुखदाई हैं, जो सच्चे दिल से उसके कार्यों को संभालते हैं, जो मैंपन और मेरेपन से मुक्त हैं, जो बहुत पवित्र हैं, जो योग युक्त रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज एक विदेश का ग्रुप मिल रहा था, एक माता ने पूछा मेरा बाबा से तो बहुत प्यार है पर मुरली से प्यार नहीं है। मैंने कहा तुमने भी सुनी होगी ये बात, बाबा कहता ही है मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार, पर तुम्हारा उल्टा है, बाबा से बहुत प्यार है मुरली से प्यार नहीं है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब, मैंने पूछा लौकिक पढ़ाई में भी पढ़ाई से प्यार था या ढीले स्टूडेंट थे, कहा बहुत ढीली थी। तो जो लौकिक में ढीले होते हैं ना पढ़ाई में, वो अलौकिक में भी पढ़ाई उन्हें बड़ी भारी लगती है। ये बाबा सवेरे सवेरे उठा देता है, ये काम बड़ा खराब है, सारा दिन तो ठीक है सवेरे छोड़ देना। कन्याएं भी ऐसा बहुत सोचती, सवेरे ही तो अच्छी नींद आती है, तभी उठा देता है बाबा। तो भगवान किन्हें प्यार करता है, हम उस लिस्ट में हैं। चलो सबसे ऊपर नाम ना हो, कहीं तो हो। हम कितने सच्चे, कितने ऑनेस्ट सिंसियर हैं बाबा के लिए, उसके कार्यों के लिए। कहीं ये तो नहीं जरा सी परेशानी हुई और बाबा में ही संशय होने लगा, मैंने उदाहरण दिया ना बहुतों की, आजकल ये कहानी आती है, 10 साल से ज्ञान में चल रहे थे, बीमारी हुई बाबा को छोड़ दिया, बाबा बीमारी भी ठीक नहीं करता। फिर मैंने सोचा डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर साहब बाबा ही सारे काम कर ले। तो बाबा को समझना, उसको पहचानना, ये भी सूक्ष्म बुद्धि का काम है। तो हम इस मुरली से सीखते हैं सदा उमंग उत्साह में रहना। कौन रह सकते हैं सदा उमंग उत्साह में, बोलो अब। उमंग उत्साह में वही रह सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बनाया हो और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से लग गए हों, डेडिकेट कर दें अपने को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा दें। साकार में बाबा कहते थे 200 नाखूनों का जोड़ लगा दो, ये हिंदी की कहावत है, पूरी ताकत लगा दो उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो एक दो बात मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उमंग उत्साह में रहना है, इसे बहुत फायदे होते हैं। जब मनुष्य उमंग उत्साह में रहता है, बाबा की पहले बहुत ही मुरलियां चलती थी, जो आत्माएं लगन में रहते हैं उनके आगे विघ्न आते ही नहीं। लगन की अगन विघ्नों को जला देती है। कुछ पाने की लगन, कुछ ज्यादा योग करने की लगन बाकी सब चीजें पीछे छुड़ा देती है। तो एक बहुत अच्छा काम सभी किया करें, अपने जीवन का सुंदर लक्ष्य बनाएं। कौन सा लक्ष्य? बाबा तो कल तो बड़ी बात कह रहे थे, अश्रतन, सबने अश्रतनों में हाथ उठा दिया, उन्होंने भी हाथ उठा दिया। हम देख रहे थे जिन्हों पता भी नहीं अश्रतन होते क्या हैं, सब उठा रहे तो हम पीछे क्यों रह जाएं? शायद बाबा से कुछ इनाम मिलने वाला होगा। लक्ष्य बनने चाहिए छोटे छोटे, एक साल का, तीन तीन मास के, तीन मास में हम ये करेंगे। और एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिस आपके सामने रख देता हूँ, तीन तीन मास का आप लक्ष्य बनाएं, उसे सवेरे उठते ही तीन बार लिखें, छोटा सा एक एक लाइन का लक्ष्य, तीन बार उसे लिखें सच्चे मन से, और ऐसा सात दिन तक लिख दें। तो क्या होगा, अगर आप सच्चे मन से उसको लिखते हैं तो ब्रेन की सारी शक्तियां लग जाएंगी आपको वो लक्ष्य प्राप्त कराने में। ये बहुत अच्छी विधि आप यूज करें, अपने लक्ष्य को लिखें, इसको कहते हैं दृढ़ता आ जाएगी बहुत। लेकिन लक्ष्य तीन तीन मास के ही बनाएं, नहीं तो हमारा लक्ष्य संपूर्ण बनना भी है, हमारा लक्ष्य कर्मातीत होना भी है, पर हम अपने से पूछें किसको याद रहता है ये लक्ष्य? शायद किसी को भी नहीं, क्योंकि अगर लक्ष्य याद रहे तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन में दिखाई देगा। आप ऐसे लक्ष्य बनाए तीन मास के, देखो एक उदाहरण कि मुझे तीन मास में अपने योग का चार्ट रोज इतने घंटे तक कर देना है। ले जाओ भाई, क्या हुआ, किसकी है ये बच्चे? हैं, मिर्गी आती है? अच्छा, फिट आती है, हो गई, ठीक हो गई, बैठो बैठो। तो ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, सुनो अब सब सुनो फिर से, मुझे तीन मास में अपने योग के चार्ट को इतने घंटे तक पहुंचा देना है। और एक ले लो कोई धारणा, तीन मास में मुझे ये धारणा पूरी तरह अपना लेनी है। एक ले लें अपनी कोई कमी, तीन मास में मुझे इस कमी को समाप्त कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव सोचने वाले ये जरूर सोचते हैं कि कमी को क्यों सोचें, हम भरते चलें तो कमी निकलती चलेगी। पर ये देखा गया है कि कभी कभी कोई ऐसी कमी लीकेज का काम करती रहती है, जैसे बर्तन में बहुत बारीक सा छेद हो, एक एक बूंद टपकता हो, तो भी तो खाली कर देगा ना। तो अपनी कमियों की जानकारी होना, उसकी अवेयरनेस होना, ये भी बहुत आवश्यक है। देखो बहुतों की उमंग उत्साह केवल एक बात के कारण खत्म हो जाती है, और वो बात होती है दूसरों को देखना, और उन्हें पता नहीं चलता, कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, पहले बहुत उमंग उत्साह थी, आजकल है ही नहीं। दूसरों को देखना बड़ा मीठा सा लगता है, बड़ा नेचुरल लगता है, और सब दिखाई भी देते हैं, आंखें तो बंद नहीं है, लेकिन दूसरों को देखने से उनके प्रभाव में आ जाना, कुछ निगेटिविटी सीख लेना। जैसे एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाऊं, बहुत पहले का है, कोई मधुबन में आए, उन्होंने देखा यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग खाने पे खूब रिमझिम लगाए हुए हैं, समझ गए ना रिमझिम। कहा हम तो घर में खाना खाते सारे घर वालों को शांत कर देते हैं, टीवी बंद, योग युक्त होकर भोजन खाना है। कहा हमारे बच्चे हमें कह रहे हैं पापा यहाँ तो सब बोल चाल करके खाते हैं, आप हमारा सब बंद करा देते हो। प्रैक्टिकल बात है ना, यहाँ को सब फॉलो करते, वो भी कुछ बड़े लोग थे जिन्हें सब जानते हैं, तो इफेक्ट हो जाता है ना मनुष्य पे। अब उसको देखकर वो भी ढीले हो जाए कि मधुबन में भी तो सब बातचीत कर रहे थे खाने पे, हम क्यों, ये तो सब ठीक है ना, बाबा के पास हैं, जो वो करेंगे वही तो हमें करना है, तो ढिलाई आ जाएगी ना। इसलिए दूसरों को देखना जो एक छोटी सी बात है जिसको मनुष्य कॉपी करके अपने पुरुषार्थ को ढीला कर देता है, ऐसी कोई कमी हमें 3 मास में छोड़ देनी है, उस पर ध्यान देना है, ऐसे 3-3 मास के लक्ष्य बना लें। एक और सुंदर बात, रोज अपने को उमंग उत्साह दिलाने के लिए रोज सवेरे उठकर, इस बात पे सभी बहुत ध्यान देंगे, रोज सवेरे उठते ही सबको खुद को चार्ज करना है। चार्ज करना अर्थात बहुत सुंदर संकल्प मन में 5-7 मिनट पैदा करें, क्रिएट करेंगे। बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही अगर आप पहला संकल्प कर दें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, चार्ज हो जाएंगे एकदम। जिनको योग में नींद आती है, नींद खत्म हो जाएगी। ऐसे 5-10 संकल्प आप अपने पास नोट करें, एक एक को कई कई बार करें, ये एक बहुत सुंदर थेरेपी है। वो थेरेपी कहूं, मनोवैज्ञानिक विधि है कि हम प्रकृति में अपना संदेश भेजते हैं। सवेरे प्रकृति शांत है ना, तो जैसे हमारी प्रकृति हमारे ऑर्डर को स्वीकार करके बुक कर लेती है। हम ऑर्डर बुक कर देते हैं प्रकृति में, हमने संकल्प किया मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, ये वाइब्रेशंस चले गए प्रकृति में, और प्रकृति ने बुक करके क्या करेगी, वो हमारे भाग्य में दिनों दिन वृद्धि। बहुत इसका अच्छा अभ्यास करना है। सवेरे उठते किसी को संकल्प आ जाए, मेरा तो योग ही नहीं लगता, उठ के क्या करेंगे। बहुतों को आता है संकल्प, सो जाओ, टाइम वेस्ट होगा, और संकल्प चलेंगे, योग नहीं लगा, तो क्या होगा, ये भी ये ऑर्डर चला गया प्रकृति में, और योग बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति और आत्मा का बहुत गहरा संबंध है इस सृष्टि रचना में। इसलिए मेरे रोज ही कहते हैं योग में नींद बहुत आती है, योग में नींद बहुत आती है, तो उनकी नींद बढ़ती जाएगी। कई तो नींद के महारथी होते ही हैं, अभी 1 मिनट का भी गीत बजता है ना, उसमें भी सो जाते हैं। जैसे कि नींद ही नहीं आती हो तभी रेस्ट लेना है, हमने देखे लोग खड़े खड़े सो जाते हैं 1 मिनट के गीत में। तो हमें याद रखना चाहिए एक दूसरी बात इसी में, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति। जो संकल्प बार बार आप करेंगे उसको आप निर्माण करेंगे। इसलिए सवेरे उठते ही उन सुंदर संकल्पों की रचना करें जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं श्रेष्ठ योगी हूं, ये कहने में तो कुछ खर्च नहीं होता। किसी को लगता होगा योग तो लगता नहीं और श्रेष्ठ योगी कैसे कहें, बाबा से प्यार तो करते हैं ना, ये भी योग है। मेरा बाबा तो कहते हैं, ये भी योग है। बाबा को अपना तो बना लिया, ये भी योग है। भले ये हल्के योग हों पर योग अवश्य हैं। इसलिए उठते ही संकल्प करें, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। दादी जानकी शुरू में एक बात बहुत अच्छी सिखाया करती थी, विजयमाला में अपना नंबर फिक्स कर लो, फिर उस अनुसार पुरुषार्थ भी करें तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा, उसका नशा हो जाए, ये है मेरा नंबर। उस अनुसार जरा कदम बढ़ाएंगे तो वो लक्ष्य हमें मदद भी बहुत देगा और इससे बहुत फायदा होगा। इसलिए चाहे अपनी बीमारी हो, चाहे कमजोरियां हो, चाहे विशेषताएं हो, यंग ये लक्ष्य हो, भविष्य का लक्ष्य हो, सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे। बीमारियों में भी ये नहीं सोचना अब तो क्या होगा, अब तो ठीक होंगे ही नहीं, पता नहीं अब तो क्या होगा, ये नहीं। आज एक बहन और आई, उसका अनुभव सुनाऊं मैं, छोटी आयु की, कहा मुझे कैंसर हो गया, पूरा परिवार आया था। मैंने उसको कहा योग लगता है, कहा 3 साल से ज्ञान में हूँ, योग तो नहीं लगता। उसने बोला ऐसे जैसे योग उसका सब्जेक्ट ही न हो। मैंने पूछा जब तुमने पहली बार सुना कि मुझे कैंसर हो गया तो क्या हुआ था तुमको, कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कैंसर हुआ ठीक हो जाएगा। देखो डॉक्टर साहब, मैं सोचा तुम इतनी अच्छी आत्मा जो कैंसर सुन के घबराई नहीं, तो लोग आधा मर जाते हैं सुनते ही, और तुम योग नहीं करती। कहा मेरे को तो योग लगाना आता ही नहीं, ऐसी भोली। फिर मैंने उसके पति को कहा तुम लगा देना भाई इसके लिए योग, किराए पे भी तो भक्ति करा देते हैं आजकल, पैसा दे के पंडितों को पैसा दो, 501 रुपए हमारे नाम की पूजा कर देना। जिनका योग नहीं लगता मैं उन्हें हंसी में यही कहा करता हूँ, किसी को किराए पर रख लो, आपके लिए योग लगा दिया करेंगे। बाबा के बनकर अगर योग लगाना ही नहीं सीखा तो बाबा की दृष्टि आएगी। तो सवेरे उठकर सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 2 संकल्प इसके साथ, माया जीत हूँ और समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ, शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। सवेरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है 10 मिनट तक, अंतर मन। ये सुंदर संकल्प हमें बहुत बल देते हैं, वो इन्हें स्वीकार कर लेता है। हमारा अंतर मन भी हमारे कमांड को स्वीकार करता है और प्रकृति भी। मनोवैज्ञानिकों को इस बात का ज्ञान नहीं कि प्रकृति भी हमारे कमांड्स को, हमारे संकल्प को स्वीकार करती है, लेकिन खास उनके संकल्पों को जो योगी हैं, क्योंकि वो प्रकृति के मालिक होते हैं। प्रकृति के मालिक वही होते हैं जो स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करते हैं, वो इस देह रूपी प्रकृति के मालिक बन जाते हैं और फिर संपूर्ण प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। तो उठते ही सुंदर संकल्प करना सभी, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, विजयी रतन हूँ, बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर है, मुझे ये पद मिलेगा ही, ओन गाएगी। सवेरे अपने को चार्ज कर दे, मुझे आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। कल बार बार कह रहे थे ना बाबा, आगे बढ़ो और बढ़ाओ। मुझे आगे बढ़ने से माया की कोई शक्ति, विघ्नों की कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, किसी के वचन रोक नहीं सकते। उमंग आ जाएगी और ये सब बातें हल्की हो जाएंगी। ठीक है, अपने अपने संकल्प चुन लेना सवेरे के लिए। क्या क्या संकल्प हमें करने हैं सवेरे, कम से कम 10 सुंदर संकल्प चुन लेना सभी, भाग्य के, शक्तियों के, स्वमान के। कुछ भी याद ना आए तो बहुत स्वमान बाबा ने हमें याद दिलाए हुए हैं, उनको ही याद कर लेना। तो उमंग में रहना और उमंग की लहर फैलाना, तीव्र पुरुषार्थ करना और उसकी लहर फैलाना, ये बाबा का बहुत अच्छा हमें संदेश प्रेरणा थी। मैं 2 बातों पर और सबका ध्यान दिलाऊं, और वो सब कर रहे होंगे, नहीं तो शुरू कर देंगे आज से ही, परसों की मुरली और उससे पहले की मुरली सवेरे की। सर्च लाइट याद है, याद करो, फ्राइडे की मुरली, शुक्रवार की सर्च लाइट। ब्रह्मा बाबा अपना बहुत सारा अनुभव सुना रहे थे, शिव बाबा ने बोला लेकिन ब्रह्मा बाबा अनुभव सुना रहे थे। वो बहुतों को पता नहीं चला कि वो ब्रह्मा बाबा का अनुभव था। और परसों की मुरली थी आत्मा देख कर बात करो, भ्रकुटी में देखो, चमकते हुए आत्मा को देखो। ये दोनों प्रैक्टिस सबको बहुत करनी है। अव्यक्त में बहुत गहरा महावाक्य, सब समय इसको अपने अंदर नोट करने वाले कर लें। जब तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से आत्मा पर जाएगी, तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। कितना रहस्य है इसमें। दूसरा, जब तुम्हारी दृष्टि नेचुरल रूप से चमकते हुए सितारे पर जाएगी, तब संसार की आत्माओं का आकर्षण तुम चमकते हुए सितारों की ओर आएगा। इसलिए हमारी साधनाओं में बहुत बड़ी साधना है आत्मिक दृष्टि बनाने की। इससे मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में ये चीज किसी ने नहीं सिखाई। सन्यासी विद्वान ये मानते रहे एक ही ब्रह्म सबके अंदर है, पर दृष्टि वैसी नहीं रही। दृष्टि में भेदभाव। शंकराचार्य की कहानी है, पहला शंकराचार्य। उस टाइम वो प्रसिद्ध विद्वान हो गया था, उसने बौद्ध नेताओं को हरा दिया था, भारत के हिंदू धर्म के सब बड़े बड़े जो प्रकांड पंडित थे उनको हरा दिया था। शास्त्रार्थ में वो जा रहा था, उधर से एक मेहतर आ रहा था कुत्ता लेकर। अभी इसके शिष्य बोलते जा रहे थे, हट जाओ हट जाओ, स्वामी जी आ रहे हैं। वो हट नहीं रहा था, वो सीधा ही चला आ रहा था। तो ये हट गया इधर को, अछूत आ रहा है। वो रुका और कहा, आचार्य जी आप तो कहते हैं एक ही है सब में, ब्रह्म ही ब्रह्म है। शंकराचार्य का मत है द्वैत मत, एक ही है सब में। फिर मेरे में भी तो वही है जो तुम में है। अब शंकराचार्य की आंख खुल गई, ये बात तो ठीक है, हम विद्वान तो हैं लेकिन कर तो नहीं रहे ये प्रैक्टिस। बस ये कहते ही वो जो मेहतर था वो लोप हो गया और उसकी जगह शंकराचार्य को दिखाई दिया शंकर खड़ा हुआ। तो उसने माना कि स्वयं महादेव मुझे सत्य का बोध कराने के लिए मेहतर बनकर कुत्ता लेकर आए थे। उस दिन से उसे ज्ञात हुआ कि जब सभी में ब्रह्म है तो ये भेदभाव क्यों। तो जब सभी में आत्माएं हैं, अब हमें ज्ञान मिल गया, बाबा ने भेदभाव मिटा दिया। कोई किसी को नहीं जानता कौन किस जाति धर्म का है, सब आत्माएं हैं। तो हम इस आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, ये हमारी अनेक समस्याओं का समाधान है। और बाबा का ये महावाक्य अभी अभी आ चुका है, आत्मा दूसरों को देखना माना सर्च लाइट देना। ऑटोमेटिकली इससे सर्च लाइट सबको मिलती रहेगी, हमारी सकाश देने की, वाइब्रेशंस देने की सूक्ष्म सेवा होती रहेगी। तो सभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे सर्च लाइट देना, आत्मिक दृष्टि बनाना, इससे प्योरिटी बढ़ेगी, देह का आकर्षण घटेगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे और सर्च लाइट देने की सेवा होती रहेगी। तो ऐसी बहुत उमंग उत्साह में रखना है, धुन लगा देनी है इन सब चीजों की। धुन लगाएंगे, एक धुन लगाएंगे तो अनेक आत्माएं धुन लगाएंगी, क्योंकि हम सब कौन हैं, आधार मूर्त पूर्वज। जो कुछ हम करेंगे अनेक आत्माएं करने लगेंगी, ऑटोमेटिक है ये। बाबा साकार में जैसा कहते थे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, अव्यक्त में सूक्ष्म रूप से कहा जैसे संकल्प मैं करूंगी वैसे ही संकल्प सब करेंगे। ये सूक्ष्म गति है, क्योंकि हम पूर्वज हैं, बीज मास्टर बीज हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। तो सभी अब 6 मास हैं, बाबा की सभी मुरलियों के एसेंस छोटे लाल भाई 5-7 बातें ही हैं, निकाल के बोर्ड पे भी लगा दें और सब उस पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा, तो निर्विघ्न भी बनेंगे, विघ्न विनाशक भी बनेंगे, अपने को बहुत पावरफुल भी बनाएंगे और एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लहर चारों ओर ब्राह्मण परिवार में हम सबको फैला देनी है। ओम शांति। संसार को सर्च लाइट देंगे, बाबा से आ रही है, संसार में फैल रही है।
प्रभु का ध्यान।